सोचना ये है, तीन बातों सोचना। एक तो मानव जीवन में अनर्थकारी कर्म का सर्वथा परित्याग करना है। जिन कर्मों से बुराई पैदा होती है, जिनका फल हमारे लिए अनिष्टकारक होगा, उन कर्मों का सर्वथा परित्याग। दूसरी चीज, उन कर्मों का करना जिन कर्मों से अपना और दूसरों का परिणाम हित होता है, जिनका नाम पुण्य कर्म है, दिहित कर्म है, पवित्र कर्म है, शास्त्रीय कर्म है, वो। पर इसमें भी सोने की बेड़ी है। ये कर्म भी अगर सकाम भाव से होते हैं तो बांधने वाले होते हैं। मानव जीवन का फल बांधने वाले कर्मों का करना ही नहीं। पुण्य कर्म करके अगर बंध गए तो इसमें भी मानव जीवन की सफलता नहीं है। एकम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीरोपनिमतलोकम विशन्ति स्वर्ग स्वल्पन्ते दुःखदायी। इसमें भी मानव जन्म की सफलता नहीं। अच्छा है, दीवार बदल जाएगी, मिट्टी के बदले सोने की हो जाएगी, रहेंगे बंधन नहीं, बंधन मिटेगा नहीं। तो बुद्धिमानी का है नहीं। मनुष्य की बुद्धिमानी वास्तव में यह है कि अपने थोड़े से जीवन में वो सावधानी के साथ लगकर मनुष्य के जीवन में जो असली काम करना है उसे करना है। अब उसका जिसके लिए जो उपाय ढूंढो, ये उपायों को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। उपाय अलग अलग हैं, अपने अपने रुचि के, मन के, शक्ति के, स्थिति के अनुसार। ये ऊंचा उपाय, ये नीचा उपाय, ये नहीं मानना है। जो भगवान के पास पहुँचा दे सभी रुचि, नीचा कौन सा? तो जिसको हम न कर सके हमारे लिए वही अधिकार की थी, हम जिसको कर सके वो हमारे अधिकार की थी। इसलिए जिसका जिसमें अधिकार, जिसकी जिसमें रुचि, जिसको जो अच्छा लगे, वही नाम, वही रूप, रूप अरूप कुछ नहीं। इसी प्रकार से भी हम अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दें, हमारा जीवन स्वस्थ होगा तो बहुत मोटे पाजी हो तो बहुत खाने पीने वाला बन जाना, ये स्वास्थ्य नहीं है भला, ये तो अस्वास्थ्य है। शरीर में अहंता बढ़ गई, जोर से ममता बढ़ गई और शरीर के आराम में खा ले तो खाने पीने के काम नहीं लग गए। पहलवान 5 मिनट हो गए तो क्या हुआ, और बड़े बाबू हो गए तो क्या हुआ? ये तो अस्वास्थ्य है, स्वस्थ नहीं। और जहाँ तक ये अस्वास्थ्य है वहाँ तक दुख होना पड़ेगा। पुरुष प्रकृतिस्थ है भुगते प्रतिजान ग्रहण कारण मन संदोष संसदीय जन्म सु बाध्य है भोगने के लिए। तो स्वस्थ हो गया, स्वस्थ माने भगवान में सत्य, स्व भगवान का नाम है, स्व आत्मा का नाम है। तो वो स्वस्थ, तो जीवन को स्वस्थ बनाकर, और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए हम जो कुछ भी आचरण करें वो है हमारे मानव जीवन का कर्तव्य। इसलिए मानव जीवन के कर्तव्य में हम लगे। तो इसमें बहुत सीधी बात सवेरे अपने बात हुई थी कि ये कोई कठिन चीज नहीं है। इसलिए नहीं है कि भगवान को बनना, भोगों को पाना हो तो होता है कठिन चीज, ये आश्चर्य की बात नहीं है। भोगों को पाना होता, कहीं नौकरी सरकारी प्राप्त करनी होती तो वहाँ सिफारिश कराओ, वहाँ सिफारिश कराओ, दरखास्त दो, अपनी योग्यता सिद्ध करो, बड़ी झंझट है। दुकानदारी सफल होना बड़ा मुश्किल। ये जितनी भी सांसारिक चीजें हैं इनका तो प्राप्त करना कठिन है, परंतु भगवान का प्राप्त करना कठिन नहीं, क्योंकि भगवान का प्राप्त करना है। ये क्यों नहीं है कि भगवान का संबंध हमारे साथ नित्य नित्य है। भगवान को जो आत्मा मानते हैं, आत्मा है, तो भगवान कहते हैं हम आत्मा दुराते भूता से सुख। सारे प्राणियों के हृदय में मैं आत्मा रूप से नित्य निवास करता हूँ, तो उनका पाना क्या रखें? और भगवान को जाना तो भगवान को हमको छोड़ के भी रह नहीं सकते। ये नाम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति तस्या हम न पुनस्याम कितने न पुनस्यति, ये उनके अपने वाक्य हैं। सर्वत्र भगवान और सब भगवान में। ऐसी अवस्था में भगवान को पाने के लिए न विद्या की आवश्यकता है, न बुद्धि की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न जनबल की आवश्यकता है, न संगठन की आवश्यकता है, न सुधार की आवश्यकता है, न ऊंची जात और नीची जात का भेद है, न स्त्री पुरुष का भेद है, न उसमें विद्वान अविद्वान का भेद है। केवल मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, ये बात जग जानी चाहिए कि हमारा मनुष्य का जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए ही है, बाकी और सब चीजें गौण है। ये बात एक बात पर जग जानी चाहिए अपने हृदय में। साधना का, भगवत साधना का प्रारंभ नहीं से होता, और अगर ये बात नहीं दिखती, लक्ष्य नहीं से होता, साध नहीं बनता, तो करते जाओ फिर, करना अच्छा है, होते होते शुद्ध होगा अंतकरण। पर कहीं हम कुछ और मान बैठे, कहीं और मान बैठे, कहीं भटक जाएंगे, कहीं अटक जाएंगे, कहीं लटक जाएंगे, मुश्किल होगी। तो इसलिए सीधी चीज ये है कि सबसे पहले अपने जीवन का स्थिर लक्ष्य करें कि हमें तो इस जीवन में, मानव जीवन में, पुरुष हो या स्त्री, भगवान को पाना है। ये बात जब ध्यान में आ जाएगी उसके बाद हम रास्ता ढूंढेंगे कौन सा रास्ता हमारे अनुकूल। तो ये जरा कड़ी बात मालूम होगी, बस बात सच्ची है। जहाँ जहाँ पर भगवान कृपा करके भोगों से हमको हटाते हैं, वहाँ वहाँ हमको विशेष नजदीक खींचते हैं, ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। क्योंकि भोगों के जितनी भी आसक्ति अधिक होगी, उतना हम भगवान से दूर जाएंगे। और भोगों की आसक्ति भोग बाहुल्य में हो बिना प्राय रहती नहीं, किसी किसी के अंदर अलग चीज है। तो इसलिए अभी तो मैं उन बाइयों के पास गया था, वो जो भी गई है, और मुझे बड़ा आश्चर्य था। मैंने कल उनसे बात की और आज भी बात की, वो जिन भाई की पत्नी का देहांत हुआ उन भाई की इतनी बात नहीं, पर वे जो दुखियां बहने जो उनके साथ हैं, उनसे बात करके तो मुझे बड़ा संतोष हुआ। अभी भी मैं गया था उनके पास विदा होने से पहले, वो चीज ठहरेगी या नहीं कह सकता, पर यदि ठहर जाए उनके मन में तो वो सुखी हो जाएंगे, उनका जीवन सफल हो जाएगा। सच्ची बात है, केवल भाव बदल जाना है। उन्होंने जो कुछ बातें मुझसे कही, उसमें कहीं आंसू नहीं थे, कहीं रोना नहीं था, कहीं घबराहट नहीं थी, कहीं बेचैनी नहीं थी, संतोष था कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। ये उन्होंने भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा यहाँ कि जो व्यक्ति हमारी इस समय है, ये भाई जी कैसे बने रहे हमारे और कैसे बढ़ते रहे, बताइए। उन्होंने और बात नहीं पूछी। कल मैंने उनसे बात की थी कुछ देर तक, उसी बात में सबसे आश्चर्य तो मुझे ये पता लगा कि ऐसा अगर भाव बदल जाए तो बदल गया। वियोग में, बिछोह में, विनाश में, चीजों के हट जाने में भगवान की कृपा का अनुभव हो तो उसका दुख तो होगा ही नहीं, वो कृपा प्राप्त हो जाएगी, दुख तो होगा ही नहीं। दुख तो जब तक विपरीतता है तब तक है। हमारे उपनिषद में आया है कि बीमारी को आदमी तप मान ले तो बीमारी से होने वाला जो मानस क्लेश है वो तो होगा ही नहीं, तप का फल मिलेगा। क्योंकि मानस क्लेश क्यों होता है? विपरीत भावना से होता है। एक आदमी तप करता है तो तप में वो जेठ के महीने में पंचांगनी चारों तरफ पांचों तरफ आग जला के बैठता है, उसको शायद तो कष्ट होता ही है, पर मैं तप करता हूँ ये भावना उसको सुखी रखती है। जाड़े के दिनों में, पोष माघ में, सर्दी में और गंगा जी के अंदर खड़े हो गए आधी रात को तो बड़ा कष्ट होगा शारीरिक, पर यदि मन में भावना है मैं तप कर रहा हूँ तो सुख होगा मानस, कष्ट हो तो ये भी। इसी प्रकार जो चीजें हमारी जाती है ना, छूटती है ना, उस समय अगर ये मान लें और ये निश्चय मन हो जाए, केवल ऊपर से न मान लें कि हमारे हित के लिए ये भगवान का मंगल विधान है, तो बस वो ठीक मंगल विधान है, वो ठीक हमारे हित के लिए होगा। दुख उसी समय गया, दुख तो जब तक प्रतिकूलता की भावना थी तब तक था, ये भगवान की कृपा का फल है। ये बात ध्यान में आते ही वो दुख हो गया, इसके बाद उसका जो फल है वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जो भगवान के विश्वासी लोग होते हैं, ये हर अवस्था में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं। हर अवस्था में ये हम पर भगवान की कृपा हुई, ये भगवान की कृपा हुई, ये भगवान की कृपा हुई। लोग कहें बहुत बुरा हुआ, वो अपने मन में कहें कि ये बहुत बुरा कहने वाले लोग जो हैं, उन बाली ने कहा मुझसे कि यहाँ तुम बहुत सुखी जा रहे हैं, हमारे मन में कोई दुख नहीं है, हमें भय लग रहा है कि वहाँ कलकत्ते जाने पर जब उस दिन आके बैठने मन लगेगी हम रुलाएंगी तब क्या स्थिति रहेगी। आज की स्थिति उनकी है, अभी वो रुल रही, बिल्कुल नहीं रुल रही थी। तो ये स्थिति में रह गया, मृत्यु ने दुख में आदमी हंसना सीख ले, नाटकीय नहीं वास्तविक, उसे हंसी आ जाए प्रलय को देख कर उसको हंसी आ जाए, तो उसके महाप्रलय के भयानक रूप में भगवान को पहचान ले कि इस महाप्रलय का नकाब लगाए हुए ये जो हमारे सामने आए हैं, ये हमारे प्रियतम हैं, परम बंधु हैं। बस फिर किसी प्रकार का भी मन में भय नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, विषाद नहीं रहेगा। तो ये एक कुंजी है दुखों से मुक्त होने की। ये बात सर्वथा असंभव है कि सारी चीजें सबके अनुकूल होती जाए और सब सुखी हो जाए, ये जगत में आज तो हुआ नहीं, होने का नहीं होगा, ये होने की होगी। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा, अर्जुन का पुत्र, 16 साल का जवान बेटा, बड़ा भारी वीर रण में मारा गया, मरना ही था, पर वो बड़ी सुंदर मौत थी, इसलिए भगवान ने समझाया सुभद्रा को। बहन आगे जब रोने लगी सुभद्रा देवी, तो श्री कृष्ण बोले बहन तो होती है, अभिमन्यु की मौत तो हम सब चाहते हैं, अभिमन्यु की मौत तो गौरव की मौत है, वो मौत हम सबको मिल जाए तो हमारा बड़ा सौभाग्य, तू रोती तो है क्षत्रिय कन्या, मेरी बहन होकर रोती है। बात क्या, उसमें गौरव बुद्धि करवा दी गई, मृत्यु में गौरव बुद्धि हुई कि मृत्यु का दुख गया। ये बलिदान जो होते हैं देश के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, इनमें क्या होता है, गौरव बुद्धि होती है, सुख बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है। इसी प्रकार ये भगवान की कृपा बुद्धि हो जाए हरेक विषय में, हरेक फल में, अनिच्छा और परेच्छा ये दो को भगवत इच्छा मान लिया जाए और भगवत इच्छा मंगल नहीं ये निश्चय कर लिया जाए तो दुख तो उसके ये संसार में रहेगा नहीं। दुख नहीं रहा अब उसके बदले में भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा माना ना तो भगवान की कृपा के साथ चित्त का संयोग हो गया, और जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सबको कृपा करते हैं, और जिस पर भगवान की कृपा होती है उसके सारे विघ्न अपने आप टल जाते हैं, और जिस पर भगवान की कृपा होती है भगवान उसके हो जाते हैं। विघ्नों का नाश होगा और भगवान उसको अपना लेंगे कृपा के साथ संपर्क हो जाने पर। तो ये बहुत करने की चीज है एक हम सब के लिए, और शोक तो करने में कोई लाभ ही नहीं है। प्रथम तो ये जितने भी मौत मार के धन है ना ये सब मामूली चीज है, होने की और होती है कुछ इसमें है नहीं, और इसमें बहुत अंश में तो वही होता जो होना होता। एक कथा आती है पुराणांतर में कि ये व्यास जी के नाना रहे सत्यवती को पालने वाले, ये जीवर थे केवट थे, तो उनके मन में एक दिन आई कि व्यास का तो बहुत मान सब जगह सभी लोग पूछते देवता होता सब इनको, तो हम अगर न मरे तो बड़ा अच्छा है इसमें व्यास सहायता करे। व्यास जाके जमराज से कह दे कि हमारे नाना को मारना मत, तो व्यास की बात तो मान ही लेगा, तो सीधा जीवर बेचारा व्यास के पास आया। भगवान व्यास से आकर के कहा बेटा हमारा काम है तुम करो, कहा नाना जी क्या काम है, तो कहा काम यह है कि तुम्हारे को सब मानते हैं सब तुमको पूछते हैं, तुम जरा जमराज से सिफारिश कर दो हमारी कि बूढ़े नाना को हमारे को मारना मारना मत। तो व्यास जी बोले महाराज ये तो मैं कैसे कहूँ, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपने योग बल से साथ ले चलूंगा सुनमनी पुरी में, और वहाँ आप कह देना मैं आपके साथ रहूंगा। कहा अच्छी बात। तो व्यास जी उस दास को साथ लेकर के सुनमनी पुरी में पहुंचे यमराज के दरबार में, तो यमराज ने बड़ा स्वागत किया व्यास जी का, बड़ी पूजा ऊजा की। अब तो उसके जचके की जहाँ इतनी पूजा होती है वहाँ तो काम हो जाएगा। यमराज ने कहा महाराज कैसे पधारना हुआ, व्यास जी ने कहा कि हमारे नाना जी हैं ये कहते हैं कि अगर यमराज से तुम कह दो और यमराज हमें न मारे तो हम अमर हो जाएं। तो यमराज ने कहा महाराज बात तो ठीक है लेकिन ये हमारा हमारे दो डिपार्टमेंट है अलग अलग, एक हम शासन करने वाले और एक मारने वाले, तो मारने वाले जो मृत्यु देवता है उनके जो उनके भ्रष्टाचार देवता है उनको बुलाता हूँ, ये काम उनके डिपार्टमेंट का है। उनको बुलाया उनके महकमे के सरदार को, वो जब आए तब उन्होंने पूछा यमराज से कि क्यों, यमराज ने कहा महाराज ऐसी बात है कि व्यास जी महाराज आए हैं कि नाना साथ आए हैं तो हंसने लगे। बोले क्या कहते हैं, बोले कहते हैं यमराज से कह दो तो हमने मारे। बोले महाराज बहुत अच्छी बात है, अभी अभी जो कुछ करना होता है बस इतने नहीं उसको मार दिया, मृत्यु नहीं मार दिया दास को। कहा ये क्या किया, बोले महाराज मैं तो चिंता नहीं था ये काम बनेगा कैसे, इसके लिए तो ये लेख था कि व्यास और ये दास और यमराज और मृत्यु चारों देहधारी रूप में एक जगह पर हूँ तभी मरे। तो मैं सोच रहा था कि मरेगा कैसे, कैसे व्यास जी को बुलाने कैसे इसको बुलाने, समय नजदीक आ गया था तो बड़ी कृपा की व्यास जी महाराज ने उनको ले आया यहाँ पर, और स्वयं साथ आ गए हमारा काम बन गया। तो ये हंसने की चीज नहीं है, असल में बात यह है कि बनना होता तो बन जाता है, अपने चिंता करके शोक करके रो करके अपनी चिंता बढ़ाने के अतिरिक्त अपने कर्तव्य से गिरने के अतिरिक्त मन में शोक करके क्षुब्ध प्रतिक होने के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता, इसलिए ये भगवान पर छोड़ दे। और अगर मोक्ष के रूप में भगवान को देख ले तो फिर महाराज कहना ही क्या है, फिर तो प्रत्येक मृत्यु भगवत रूप होकर भगवत प्राप्त कराने वाले होंगे। जो मौत को भगवान समझेगा उसकी मौत आती मर जाएगी। हाँ मौत मर जाए, मौत मरना के मरेगा फिर क्या की फिर उसके लिए मौत मर रहे, यही तो मौत का मरना है। तो जिसने मौत को भगवान मान लिया उसकी मौत मर जाएगी भगवान रह जाएंगे, और भगवान को प्राप्त होने वाला फिर कभी बिछुड़ता नहीं, ये नियम है। भगवान से जो मिल गया वो कभी लौटता नहीं, मान उपेक्षित कम थे उन्हें जन्म न मिले थे, मुझको प्राप्त करने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये चाहे उसको भगवान कहें भगवान का धर्म धाम कहें मुक्ति कहें कुछ भी कहें जहाँ से लौटता नहीं बस। तो ये जो चीज है ये इस मानव जीवन में ही प्राप्त करनी, इसलिए ये मौत वोत का सब भय छोड़ करके मौत को जो स्वाभाविक मान ले, मौत तो विभीषिका की वस्तु है ही नहीं, ये तो सहज चीज है जाते से भूल मृत्यु धनगर मृत्यु शिचर तस्मात अपरिहार्य थे। बोले भाई तो अपरिहार्य है मामूली बात है, इसके लिए नियम चिंता की कौन सी बात है, जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी इसमें है क्या। और सचमुच ये तो हम जिस लोक में रह रहे हैं ना इस पर साइन बोर्ड लगा है मौत का, इसका नाम कौन हुआ मर्त्यलोक है, जैसे शत्रु भवन गीता भवन ऐसे ही मर्त्य भवन मर्त्यलोक, इसका नाम ही है मरने वाला लोक मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक में अमरता कैसे, यहाँ तो मृत्यु का प्रवाह बह रहा है। ये डॉक्टरों का विज्ञान का ये मत है कि हर सातवें वर्ष ये अवयव सारे के सारे बदल जाते हैं। हमें मालूम होता है वो खेलो है, वो मालूम होता है आत्मा के कारण से वो एक है ना। लड़कपन में वही था, दीवानी को देखने वाला भी वही, मुराद को देखने वाला भी रूप करता है वही। पर लड़कपन का जो छोटा सा शिशु रूप था उसके साथ जब उसको मिलाओ हमारे इस रूप को आज हमने पहचाना नहीं, देखा नहीं है, पता नहीं लगेगा। मर गया वो जो बच्चा हनुमान के साथ था वो मर गया, कभी का मर गया। गंगा का जो जल था एक घंटे पहले वो मर गया, यहाँ से मर गया, मालूम कहाँ बह गया आगे। हम समझते गंगा वही बह रही है, वही कहाँ बह रही है। वो जल तो अनवरत नया नया आ रहा है, पुराना पुराना जा रहा है और जा रहा है। ये प्रतिक्षण नहीं, अनवरत जा रहा है। प्रतिक्षण कहें तो दूसरे काल का मान आ गया, बिना काल मान के ये जल निरंतर बाहर चला जा रहा है। इसी प्रकार मृत्यु का प्रवाह निरंतर बाहर चला जा रहा है। इस मृत्यु के प्रवाह में कोई चाहे इस प्रवाह में मैं हो जाऊं, किसी को उन्होंने कहा धर्मराज ने कि मैं आश्चर्य पर अहन भूतान गच्छन्ति हेम मंदिरम शेषा स्थावर मिच्छन्ति कि मैं आश्चर्य परम। रोज मरते हैं लोग, रोज हम थूक के आते हैं, रोज रोते हैं उनको देख देख करके, और हम चाहते हैं कि हम मरे नहीं कभी। शेषा स्थावर मिच्छन्ति मृत्युलोक में न मरे ऐसा कहूँ, मृत्युलोक में न मरे ऐसी वस्तु क्या, मृत्युलोक में न बिछड़े ऐसी वस्तु क्या। तो बिछड़ने वाली मरने वाली ये तो यहाँ के चीजों का स्वभाव है, इसलिए इनकी परवाह न करके, परवाह कर इस बात की कि हमारे जीवन का जो कार्य था वो बन रहा है या नहीं। अगर वो नहीं बन रहा है तो चाहे कुछ भी आप प्राप्त कर लें, बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर लें, गौरव प्राप्त कर लें, अपने को बद्र पुरुष मान लें, लो पुरुष मान लें, कुछ भी नाम रख लें, न बद्र रहेगा न वो लो रहेगा, कुछ नहीं, बस वो तो मृत्यु के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है जो निरंतर वो बह रहा है। तो ये जब तक ये है तब तक ये सावधानी के साथ क्षण भंगुर देह में असली काम करना, वो काम पहले करना, पहले वो काम करना है और सब काम पीछे। इसलिए ये सवेरे से ही मैंने कहा था ना कि आदमी क्या शमशान वैराग्य हो रहा है। शमशान वैराग्य का अर्थ होता है जो थोड़ी देर के लिए ठहरे, मशान में रहे उसके बाद फिर जाए। तो ये मशान वैराग्य में रह करके वास्तविक वैराग्य हो गया। वास्तविक वैराग्य क्या है कि जगत के पदार्थों में प्राणियों में राग न रहे। ये राग आता है ममता से, प्राणियों में राग न रहे, हमारा सारा अनुराग सब जगह से सिमट कर एकमात्र उस वस्तु में हो जाए जो नित्य है, जो सत्य है, जो कभी मरता नहीं, घटता नहीं, मिटता नहीं। जैसे मीरा ने गाया बरबरी एक सांवरो मेरे चुड़ैलो अमर हो जाए, उसे डरो उसको धर्म करो, जो कभी मरता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, जो हटता नहीं, जो घटता नहीं, जो सदा रहता है, सदा सता रहता है, सदा हृदय में रहता है, किसी अवस्था में भी वो साथ छोड़ना जानता नहीं, वो नित्य सत्य सनातन सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो भगवान, वो अपना परम प्रेमास्पद, वो परम शरणद, परम कृपालु, दयार्णव, दया सागर, कृपा सिंधु, ऐसा जो एक महान महान तत्व है, बस उस तत्व के साथ अपने आप को जोड़ लिया जाए, उसके प्रति जीवन की गति हो जाए, वो हमारे जीवन का साध्य बन जाए, लक्ष्य बन जाए, और फिर हम जिसके पास जैसा सामान हो, जिसके लिए जो रास्ता हो, उसी रास्ते पर वो चल पड़े। ये मानव जीवन का असली उद्देश्य है, उस रास्ते पर लग जाना, प्राप्त कर ले सर्वोत्तम। और प्राप्त इसी जन्म में हो सकता है क्योंकि वो बड़ा सहज है प्राप्त होना, भगवान की प्राप्ति के समान सहज कोई वस्तु नहीं। परंतु यदि प्राप्त न भी हो तो कम से कम उस रास्ते पर आरूढ़ हो जाए, उस रास्ते पर चलने लगे, जीवन की गति उसकी ओर हो जाए, लक्ष्य भगवान बन जाए जीवन का, ये आदमी कर ले तो फिर चाहे रास्ता कोई सा हो। निजू नाम वो बैठा जो शाम ये महम में आया कि भाई अनेक टेढ़े मेरे रास्तों से नदियां जाती हैं पर जाती हैं समुद्र में, उसी नाम है चित्र आज निकुल नाना पर जुशाम, नाम एक हो गम्य है, जाने की चीज पहुंचने की चीज पाने की चीज वो एक ही है, रास्ते भिन्न भिन्न है। तो रास्ते भिन्न भिन्न होने से कोई आपत्ति नहीं, रास्तों को लेकर लड़े नहीं, अपने रास्ते चलना छोड़े नहीं, ये साधक का कर्तव्य, अपने रास्ते पर चला जाए, भगवान की कृपा का भरोसा कभी छोड़े नहीं। ये कृपा कितने काम करती है, सबसे पहला काम करती है ये गारंटी दे देती है, सबसे पहली ये बात करती है कृपा, तुम अगर मेरी रक्षा में आ गए तो तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी और तुम्हें भगवान तक पहुंचा दूंगी, ये कृपा की प्रतिज्ञा है। अगर तुम मेरे शरण में आ गए, कृपा कहते हैं जास कृपा नहीं कृपा आघाती, जा पर कृपा राम कर होगी, ता पर कृपा करे सब कोई है, वो सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा परिश्यसी, ये भगवान ने कहा कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है, वो तो कृपा करती है, गेंद देती है। फिर कृपा क्या करती है, रास्ते के तमाम विघ्न भर लेती है। फिर कृपा क्या करती है, ये गिरने देती नहीं, ऐसी माँ है ये, इसको हाथ पकड़ा दिया नहीं गिरने देगी। फिर कृपा क्या करती है, विपक्षेम का वहन करती है। भगवत कृपा, भगवत कृपा के भरोसे पर जो रह जाते हैं ना महाराज इस जगत में और बात छोड़ी संसार में भी, भगवान की कृपा के भरोसे जो हो जाते हैं उनका जागतिक योगक्षेम नहीं, माने पारमार्थिक योगक्षेम है वो तो भगवान कृपा वहन करती है और असली वही है, पर जागतिक योगक्षेम के लिए ये कहने में यूँ नहीं आता कि लोग कृपा पर तो निर्भर होंगे नहीं, राशि बन जाएंगे, इसलिए कहने में डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे रास्ता मिल जाएगा ना, फिर हम तो भगवान कृपा पर निर्भर करते हैं, काम कौन करे, क्यों करे, क्या करे, कौन कितना ढंग करे, हम तो बस कृपा के भरोसे हैं। कृपा कभी आलसी नहीं बनाती, कृपा प्रणाली नहीं बनाती, पर कृपा का यदि भरोसा है तो भगवत कृपा जागतिक कार्य भी इस प्रकार करती है कि जैसा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान की कृपा योगक्षेम का वहन करती है, भगवान की कृपा हमेशा रास्ता बताती रहती है, जहाँ भूले तो कृपा का रास्ता बता देगी, जहाँ हमने प्रमाद किया वहाँ अगर मौका देखा कृपा ने तो छक्के मार कर अलग करेंगे, और नहीं माने तो कान पकड़ के अलग कर देंगे, भयानक रूप में आएगी। तो भगवान की कृपा का भरोसा रखें और अपने जीवन के शेष श्वासों को जितने बचे हैं उतने भगवान को सौंप। ये एक आदमी ने हमसे पूछा है अभी, निष्काम कर्म का क्या रूप है, भगवत अर्पित कर्म का क्या रूप है। यही रूप है, निष्काम का अर्थ है जिसमें कामना न हो, तो निष्काम कर्म हो सकता कर्तव्य बुद्धि से भी, हमें किसी वस्तु की कामना नहीं करनी है, कामना से रहित जो जो कर्म उसका नाम निष्काम कर्म है, पर वो निष्काम कर्म भी लौकिक कामना न होकर भगवत प्रीति की इच्छा हो तो भगवत अर्थ होता है, वो और महत्व का है। तो हमारा प्रत्येक कर्म जब हमारा लक्ष्य भगवान हो जाएगा तो भगवान के लिए होगा, भगवान की कृपा से होगा, उनकी शक्ति से होगा, अपना अभिमान नष्ट हो जाए। जिसको भगवत कृपा का भरोसा है और जिसको भगवत कृपा का ही आश्रय है वो अभिमान करेगा किस बात का, जगत का कोई उसके पास आश्रय का स्थान है ही नहीं, इसलिए वो भगवान की कृपा का आश्रय हमेशा भगवान की कृपा की सुरक्षा में रहेगा, काम होगा उसका। और यही बात जो है ये वास्तविक शरणागति में है, शरणागति में परम आश्रय का ग्रहण, इसका नाम शरणागति, अपने आप को पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के भगवान के चरणों पर छोड़ देना, जो करें जब करें जैसे करें बस वही ठीक। तो इनमें लाभ ही लाभ है भला, अपनी अपनी योग्यता, अपना बल, अपनी शक्ति का जहाँ भरोसा है वहाँ बड़ी दिक्कत है। यहाँ तो महान शक्ति, महान बल, महान आश्रय जो सर्वोपरि है वो हमारे क्षण में आ जाएगा, उसका हमें आश्रय प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सहज चीज है, तो तीन बात याद रखने की है, इस जन्म का मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं एक बात, और मानव जन्म में भगवान की प्राप्ति होती है औरों में नहीं, इसलिए भगवान की प्राप्ति हमारा लक्ष्य बने दूसरी बात।